તારીખ 10/1/1994 ના દિવસે પૂજ્ય ભાઈ શ્રી શશીભાઈ દ્વારા દુલાલીમાં થયેલ તત્વ ચર્ચા સળંગ પ્રવચન નંબર 95
અપનત્વ કે કારણ પર અમારા પુરુષાર્થ માં ભી લગતા હૈ ઓર ફિર સંતુલન રહેતા નહીં ये बात अपने चली संतुलन के फटो में ज्ञान और पुरुषार्थ ज्ञान किसको कहे कि सही ज्ञान सच्चा ज्ञान वो है कि जो पुरुषार्थ को जागृत करे पुरुषार्थ का प्रेरक हो जाए पुरुषार्थ का प्रयोजक हो जाए उसी का नाम ज्ञान जो ज्ञान से पुरुषार्थ की जागृति नहीं हो वो ज्ञान नहीं है सिर्फ इंफॉर्मेशन है कि ये बात ऐसे वो बात ऐसे हमको कोई लेना देना नहीं है ऐसे हो जाएगी तो ज्ञान और पुरुषार्थ वो कारण कार्य रूप में होता है मतलब ज्ञान कारण है पुरुषार्थ इसका कार्य तो संतुलन के प्रकरण में लिया तो हमारे परम कल्याण की बात तीर्थंकर आदि जब ठोक ठोक कर कहते हैं ऐसा किया है तो फिर हमारा पुरुषार्थ पूरा लगना है इसके बजाय हम पुरुषार्थ को छिपाते हैं गोपोते हैं हमारी शक्ति जो है दूसरी ओर भी लगा लेते हैं उसको डिवाइड कर देते हैं तो काम हो पाता नहीं है
तो ये कैसे जाने कि इनफ पुरुषार्थ कर रहे हैं ये कैसे जाने कि हम इनफ यानी जितना चाहिए उतना ही कर रहे हैं या काम कर रहे हैं उससे ज्यादा उसका माप कैसे कैसे
जब पुरुषार्थ हम ही कर रहे हैं तो पहले तो नहीं कर रहे थे और हम कर रहे हैं अब कर रहे हैं दो बीच का कंपैरिजन नहीं होगा क्या हमारे परिणाम आप तो आप अपने बारे में पूछ रहे हैं हम कैसे जाने अगर आपका सही पुरुषार्थ चलेगा तो दूसरा भी जान लेगा आप नहीं जानेंगे क्या दूसरे भी जान लेंगे इनका पुरुषार्थ चलता है आपकी सब बात बदल जाएगी आपके भाव आपकी भाषा आपकी सब प्रकार के जो है परिस्थिति है ये इतने बदल जाएगी कि दूसरे को मालूम पड़ जाएगा आपको मालूम नहीं पड़ेगा तो बात ही नहीं है दूसरे को भी मालूम पड़ जाएगा कि आपको पुरुषार्थ चलता है आज ऐसा लगता है तो ऐसी चीज है पुरुषार्थ क्या है हाँ उसका नेत्र भी बदलता है उसका बलन भी बदलता है नैन और वैन नैन के बारे में और वैन को एटीट्यूड कहते हैं पूरा गलत बदल जाता है वैन मारानी पर कह रहे हैं हाँ वैन इतने वाणी ना वैन इतने एटीट्यूड गलत वैन नैन सब बदलता है वैन इतने वाणी भी बदल जाएगी भाषा भी बदल जाएगी नेत्र भी बदल जाएगा एटीट्यूड भी बदल सब बदल जाएगा दूसरे को मालूम पड़ जाए इतना बदल जाता है अपने को क्या नहीं मालूम पड़ेगा मतलब पुरुषार्थ क्या है तो फोर्स है एक जीव के स्वभाव में एक स्वभावगत बात ऐसी रही है हमेशा हमेशा विकास के जीव को जितना ज्यादा लाभ उतना ज्यादा रस उतना ज्यादा फोर्स अब आपके अनुभव को देखते हैं व्यापारी को तो मालूम पड़ जाएगा क्योंकि इस काम में हमको एक हमको एक लाभ मिल रहा है जिसकी कीमत हम आते हैं कभी इतनी कीमत में ये माल मिल जाए तो ठीक है जैसे आप लोग हम आप आए ना दलाल लोग आप कभी देखो भाई आपने देख लिया माल ना आपको अंदाज आ गया कि इस कीमत का यह माल है अब जो अगला है वो भाव कहता है तो रुपया का 12 आना बोलता है आपका एक्सपेक्टेशन से भी 4 आना 75% या 50% का भाव वो बोल देता है तो आपको थोड़ा शंका होगी कि कहीं मेरी वो देखने में तो भूल नहीं होगी ना नीचा भाव क्यों पता है आप ध्यान से देख लिया गौर से देख लिया अच्छा चीज तो बढ़िया है सस्ते में वो भी कहेगा भाई देखिए चीज अच्छा है लेकिन अगले को गर्व है, मेरे लिए पैसा चाहिए, इसलिए आपसे ये पैसा मिल जाएगा, वे भी ऐसा सोच करके ये आपको भाव बताया है, वरना इसका भाव तो हम जानते हैं कि वो भाव में वो भी सकता है। अब आपको रस कितना आएगा? अच्छा, वो बड़ा लॉट हो, एक साथ ज्यादा ज्यादा मुनाफा देखता हो, तो रस क्रिएट करने के लिए कोई चिंतन मनन घुलन करना पड़ेगा क्या? है सीधा रस बढ़ जाएगा कि रुपया का हमारा आसान में मिलता है, इधर लिया इधर बेचा, पैसा घर में आ गया, कुछ नहीं किया है, लेकिन उतना मशीन काम करेगा परिणाम में कि जैसे मुनाफा घर में आ गया हो, तब तो बेचेगा जब तो पैसा आएगा, लेकिन उतना रस आ जाता है। जितना ज्यादा लाभ होता है उतना रस आता है, जितना रस बढ़ता है उतना पुरुषार्थ बढ़ता है, क्योंकि रस ही शक्ति है परिणाम से। तो हमें मोक्ष का लाभ मिलता है, ये ऐसी बात है, सिद्ध पद का लाभ मिलता है, तीन लोग का नाश बन जाए तो रस नहीं आएगा, पुरुषार्थ तो नहीं उठेगा, कैसे नहीं बन ही नहीं सकता। हाँ, मूल्यांकन नहीं हुआ हो तो दूसरी बात है, मोक्ष मैंने कुछ नहीं, सब्जी तरकारी भाजी कोई है, मोक्ष कोई भाजी होगी हाँ, जिसका कोई मूल्य नहीं तो बात अलग है। तो मोक्ष का ज्ञान हो, शादी अनंत अनंत समाधि सुख में अनंत दर्शन अनंत ज्ञान सही जो, और तीनों चारों गति का दुख मिट जाए, सभी प्रकार के दुख मिट जाए, इसका कितना मूल्यांकन कितना होता है, थोड़ा सा उतना ही आता है, और इतना पुरुषा तो उठता ही उठता है, नहीं उठा ऐसा बनता ही नहीं, ये स्वभाव व्यक्ति है। लाभ में लाभ का हर्ष होना और नुकसान में नुकसान का खेद का रस होना, तो पता चला
शेयर बाजार में जो
कि हमारे पास उतने शेयर और बाजार गिर गिर गई, हमारी पूंजी 25 लाख की थी 10 लाख की भी नहीं है आजकल, 25 माह से 15 लाख चला गया है, क्या बोलेगा, मर गया रे मर गया ऐसा बोलेगा, उसके पास कुछ नहीं है, उसको 10 लाख मिल जाए तो मैं तो तर गया जिंदगी पूरा, मुझे तो बहुत जीवन में मिल गया ऐसा लगेगा, कल्पना क्या होती है। एक आदमी बिल्कुल दरिद्र है, उसका 10 लाख मिलता है तो उसका उसका हर्ष समाता नहीं है, और 1 करोड़ वाले का 90 लाख चला जाता है तो उसको तो हार्ट अटैक ही आता है, 10 लाख होते हुए भी हार्ट अटैक आता है, क्योंकि 90 लाख उसका, वो बोलेगा मेरा तो सब चला गया, 10 लाख तो दोनों लिए, दोनों के लिए 10 लाख है, एक तो फुला नहीं समाता और दूसरा मैडस बेड पर आता है सीधा, यही 10 लाख है, दूसरा नहीं है।
अब भाई तेरा शुरू करो देना के गुण में दशा तो है,
मेरे में कुछ नहीं हुआ, 90 लाख गया ये मेरे में से गया है और 10 लाख मेरे में
आया,
क्योंकि मेरा अस्तित्व इसमें है नहीं, ये बात है, क्योंकि मेरा अस्तित्व इसमें
है लौकिक में भाई जो फरज हो, लौकिक में जो फरज गणती हो, फरज ने बने आज क्षेत्र पर मर्यादा सुन ली
मैंने, बिल्कुल लौकिक फर्ज माने क्या, मैनेजर मैनेजर हो जा फिर कोई आपत्ति नहीं, धनी हो जाओ तो आपत्ति है, काम तो धनी से भी अच्छा करेगा मैनेजर, क्योंकि प्रमाणिक है,
प्रमाणिक मैनेजर थे जो
प्रमाणिक ऑनेस्ट ड्यूटी देना है, फिर तक तो इसको तो पूछ लेना
जी,
फिर तक ऐसी बात है, लेकिन धनी पना छोड़ने में पसीना मैं धनी हूं कैसे नहीं माना, मेरा अधिकार है मैं कैसे छोड़ू, मेरा तो ऐसा होता है पैसे की मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन अधिकार मेरा है, हाँ पैसा ले जाओ तो पैसा हम दे सकते हैं, लेकिन अधिकार हमारा नहीं जाना चाहिए, ऐसी बात, यही तो झगड़ा चलता है। इसलिए जीव पुरुषार्थ सत्संग के योग में पुरुषार्थ उसका चलता है तभी तो ये सफल है। अगर पुरुषार्थ नहीं उठाता है नहीं उठता है तो ये सत्संग का योग अयोग के बराबर हो जाता है।
धनी गुण करे से त्या शक्ति खर्चे, धनी गुण करे से त्यानी शक्ति खर्चे है
पूरी शक्ति। यहाँ स्वामित्व होता है या पूरा पूरा शक्ति का प्रयोग करेगा। स्वाध्याय इसलिए सत्संग स्वाध्याय का व्यवहार है भाई साधन का सही मूल्यांकन आ जाए। आत्मकल्याण या मोक्ष का कितना मूल्यांकन है अगर ये नहीं होगा तो हमारी हालत क्या होने वाली है इसका मूल्यांकन है। अगर हम नहीं समझे नहीं सोचे नहीं सुलझे तो हमारी क्या हालत होगी और समझ लिए तो क्या हालत होगी। इतना मूल्यांकन हो जाए तो पुरुषार्थ तो स्वतः ही होने वाला है। मूल्यांकन नहीं होता है तो मोक्ष भी सब्जी तरकारी जैसा लगेगा। तो रोज सुनते हैं मोक्ष की बात को रोज सुनते हैं हो जाएगा रीढ़ा गुनेगा क्या
रीढ़ा
दीट गुनेगा। ज्यादा क्या कहना इतना ही संक्षेप जीव में परिणाम को प्राप्त हो तो उस जीव ने सर्व व्रत कर लिया सर्व यम कर लिया यम मैंने संयम सर्व नियम कर लिया सर्व जप कर लिया सभी यात्रा भी इसकी हो गई उसको भक्ति भी हो गई और उसको शास्त्र ज्ञान भी हो गया। उतना ही संक्षेप है कि जैसे स्वप्न दशा में अपना मृत्यु दिखता है वो नितांत भ्रम है ऐसा बन ही नहीं सकता ऐसे पर पदार्थ में हमारी आत्मा नहीं होने पर भी अपनत्व लगता है वो भ्रम है नितांत भ्रम है स्वप्न दशा है। ये छूट गया तो सब हो गया उसका व्रत नियम संयम जप यात्रा भक्ति शास्त्र ज्ञान सब इसमें समाधि अज्ञान छुटा उसमें तो सब कर चुका उसमें कोई संशय नहीं है। जा सही मुक्त होगा मुक्त हो गया क्योंकि प्रतिबंध नहीं रहा प्रतिबंध तो अपनत्व का था या अपनत्व नहीं था अपनत्व कर रखा था वही प्रतिबंध था तो प्रतिबंध छूट गया बंधन नहीं तो बंधन का दुख भी नहीं। जैसा हो अगले का होता है मेरा होता नहीं है। और खास करके जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर चला गया ऐसे उनको तो बहुत आसान काम है। क्यों इसलिए कि उनको तो बाकी टाइम सब थोड़ा रहा है अब टाइम जो समय जो थोड़ा रहा है उसमें कितना खाएगा कितना छोड़ेगा जो भी इनके पास है उसमें से क्या 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 उसके भोग में कितनी चीज आने वाली तो ये तो इनकी ऐसी ही नहीं है वो तो जो पीछे वाले परिवार वाले इनके लिए छोड़ के जाना है उसको तो फिर अपनत्व करके आत्मघात क्यों करना अपनत्व करना इसलिए वो आत्मा का खून करना बराबर है सुसाइड है वो तो और कुछ नहीं है क्यों करना तो अपनत्व करना ही नहीं। तो ये जो वेदांती लोग हैं ना इसमें तो एक वो बात है कि कुछ साल के बाद घर वाले को संन्यास दे देते हो क्या वानप्रस्थ फिर संन्यास्त वो गृहस्थ होते हैं फिर वो 50 साल के बाद उसको वानप्रस्थ मैंने कुछ लिमिट में आ जाना काम में कारोबार में घर में और हर जगह उनको अपना जो है उस पीछे ले लेगा हस्तक्षेप छोड़ देना हर जगह से जो भी काम करता है अपना हस्तक्षेप नहीं अपना कोई अस्तित्व नहीं और कुछ साल के बाद उसको छोड़ देना तो क्या वो कहीं भी रहता है सब सब भूमि गोपाल के नहीं मिले हर जगह उनको तो कोई कहीं अपनत्व नहीं है अपने घर में भी अपनत्व नहीं है कहीं भी रहे तो अपनत्व नहीं है आश्रम में रहे तो भी अपनत्व नहीं आजकल तो आश्रम में अपना बना लेता है हमारा आश्रम है नहीं कहीं भी रहे उसको संन्यास आश्रम कहते हैं चार आश्रम बोलते हैं उसको गृहस्थाश्रम गृहस्थ को भी आश्रम बनाया और वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम आश्रम ही बोलते हैं उसको आश्रम में कुछ टाइम रहना होता है छोड़ देना कुछ टाइम रहना है छोड़ देना बस आश्रम ही आश्रम
मोक्ष दशा नु मूल्यांकन અને શુદ્ધ અંત
પ્રશ્ન વો હૈ કોઈ મોક્ષ હો અપના આત્મ કલ્યાણ શુદ્ધ અંતકરણ સે કરના ચાહતા તો ઉસકો મોક્ષ કા મૂલ્યાંકન સહી હોગા अगर इसका अंतकरण शुद्ध नहीं है तो मोक्ष का मोक्ष की बात लॉजिक न्याय साइंस सब समझेगा मूल्यांकन आएगा नहीं ये कोऑर्डिनेशन बैठता है इसका बैठता है
शुद्ध अंतकरण आ जाएगा
हाँ कृपालु जी ने एक आदमी को ऐसा पूछा था क्यों हमारे पीछे लगे हो जहां हम जाते हैं आ जाते हो हमारे पीछे क्यों लगे हो आत्म कल्याण आपसे होगा ऐसा लगता है इसलिए आते हैं मौके करना है शुद्धांतकरण से आत्म कल्याण करना है या दिखावा करना है कि हम भी राजचंद्र वाले हैं क्या करना है, है? आजकल तो स्टेटस सिंबल हो गया है हम फलाने के फलाने फलाने हम फलाने स्टेटस सिंबल हो गया है कि आत्मकल्याण अंतरंग से करना है शुद्ध अंतकरण से करना है शुद्ध अंतकरण से करना है तो ये मार्ग सुगम है सरल है सर्वत्र इसकी प्राप्ति हो सकती है अगर अंतकरण में मलिनता है तो कोई बात पल्ले पड़ने वाली धारणा कितनी भी हो जाएगी यादाश कितनी भी हो जाएगी अपने काम में आने वाली नहीं है क्योंकि अभिप्राय उल्टा है अंतकरण से अभिप्राय सुलटा हो जाता है ये अभिप्राय उल्टा है बस इसलिए ऐसा होता है अभिप्राय में कुछ प्रवृत्ति में कुछ ये हो गया तो अपने आप को ओ जी उसमें पर्दे में रख लेता है अपने आप को वंचना में ले जाता है उसको वंचना बुद्धि कहते हैं क्या कहते हैं वंचना बुद्धि कहते हैं
इसलिए
वंचना लक्षित रह जाओ वंचना बुद्धि में पत्र यहाँ समाप्त हुआ
कितनी बड़ी अप्रमाणिकता करी है सर प्रमाणिक तो गुरु करे
बात तो ऐसी है अपना आत्म कल्याण के विषय में जब हम प्रमाणिक नहीं रहते तो और जगह हमारी प्रमाणिकता हो ये बात कैसे मानने लायक हो सकती है
जी
सवाल ही
पता पोताने चेत रहे तो बीजे ने केम नहीं चेत
सवाल ही पता नहीं
पोते पोताने जात ना चेत रहे बीजा तो चेत ही सकते
बीजा ने तो चेत रहे सकते हैं मतलब लेकिन दूसरी जगह भी प्रमाणिक रहने का सवाल होता है तो कहेंगे कि नहीं नहीं हम हमारे व्यवहार में तो प्रमाणिक है ये बात पांगो पांग बनने वाली नहीं सांगोपान इंद्र समझते हैं सांगोपान इसको सांगोपान कहते हैं मैंने हर पहलू है
સત્સંગ સિવાયના સમયમાં પુરુષાર્થ કરવો પ્રયોગ કરવો
સત્સંગ મેં ભી કર સકતા હૈ પુરુષાર્થ કા કોઈ પીરિયડ નહીં હોતા હૈ ઇસ પીરિયડ મેં પુરુષાર્થ કરના ઇસકા કોઈ પીરિયડ અધ્યાય કા પીરિયડ હો સકતા હૈ સાડે તીન સે સાડે ચાર સ્વાધ્યાય કરેંગે પુરુષાર્થ કા કોઈ પીરિયડ નહીં હૈ साथ तो निरंतर करने की चीज है करने की चीज क्या हो तो होता ही है जिसको पुरुषार्थ जागृत होता है उसको तो होता ही रहता है उपदेश में करना ऐसा बोलने में आता है तो उपदेशात्मक वचन है इसका मतलब क्या सहज होता है
અશુદ્ધ અંતકરણ વાળાને જ બધા પ્રશ્નો થાય અશુદ્ધ અંતકરણ વાળાને જ બધા પ્રશ્નો થાય
અંતકરણ શુદ્ધ હો ગયા મેજર વાત હૈ સબ સમાપ્ત હો ગઈ પૂછને કે લીએ
જી
ઓર પ્રયોગ ચાલુ હો ગયા તો 99% બાર પૂછને નહીં પડતી હૈ પ્રયોગ કે દોરાન હી ઉસકી સૂઝ આને લગતી હૈ એસે કરના એસે કરના એસે કરના शुद्ध अंतकरण से शुद्ध चित्त से इसका मतलब कि उसमें कोई गड़बड़ नहीं है भीतर में कोई कंडीशन नहीं है जैसे हमारे क्या होता है कि हम हमारा आत्म कल्याण तो करना चाहते हैं लेकिन इसलिए नहीं होता है कि कुछ ऐसा है कुछ ऐसा है कुछ ऐसा है कुछ ऐसा है तो वो ऐसा नहीं होगा तो हम कर सके ये कंडीशनल बात हो गई ये परमात्मा को प्रत्यक्ष करना है तो उसमें कोई कंडीशन
नहीं चलते नहीं
कोई आशा अपेक्षा संसार के लिए रखे मोक्ष के भी रखे तो अंतकरण शुद्ध
नहीं है
इसलिए हर हालत में किसी भी कीमत पे इसको काम करना है शुद्ध अंतकरण से उसको सुगमता से हो जाता है अगर ऐसा नहीं है तो सभी प्रकार के विटंबना ही विटंबना पदार्थ निर्णय तो फिर आगे जा करके होगा ये नीम की बात है फाउंडेशन का स्टोन है नीम में ये बात होनी चाहिए सर्वप्रथम से अपने आप को टटोल करके ये बात का निर्धार करना पड़ेगा कि हमको आत्म कल्याण वाक्य ही शुद्धांतकरण से करना है कि नहीं करना है कि ऊपर ऊपर से करना है जितना अनुकूलता होगा उतना करेंगे अनुकूलता नहीं हो तो फिर कोई और जगह हमारी जवाबदारी होती है सब करना पड़ता है उनकी एक नहीं जवाबदारी
जब तक आएगा
काम नहीं होगा सर्वोत्कृष्ट पदार्थ की प्राप्ति करना है तो उसकी कीमत उतनी देना ऐसा अभिप्राय नहीं है तो प्रामाणिकता कहाँ रही 10 रुपये में सब्जी आएगी 10 रुपये में हीरा नहीं आता ये बात तो मूल चीज है ये थोड़ा टकड़ने से बहुत पता चलता है हमारे परिचय में सब जवान लोग हैं कुछ बोले के मोक्ष का ध्येय बांधने की बात है अच्छा है लेकिन मोक्ष का ध्येय मानने के लिए प्रयत्न करते हैं लेकिन मोक्ष का ध्येय होता नहीं है, आता नहीं है, क्या करें। तो उनको कहा कि जरा अंतकरण को देखो, अंतकरण शुद्ध है कि नहीं है। 24 घंटे के बाद मिलना, एक दिन के बाद जवाब देना अभी भी जरूर नहीं है। अरे हमारे परिणाम देखते हुए हमारी नियत अच्छी
नहीं है।
अंतकरण मतलब नियत है, हमारी नियत ही अच्छी नहीं है। हम नियत से काम नहीं करते हैं तो उसका इसकी सफलता कैसे होगी, हो ही नहीं सकती। ये तो नियत का सवाल है। उसमें इतना किया हमने, इतना साल से इतना किया, इतना तो स्वाध्याय किया, इतना तो शास्त्र पढ़े, इतना तो वो किया, इतना तो वो किया, इतना तो कई प्रकार के समर्पण किए, वो किए वो किए, लेकिन नियत ठीक नहीं तो बात सब बेकार। ज्ञानियों ने बहुत रास्ते को सरल कर दिया है, तो इतना सरल रास्ता भी है, रास्ता भी उतना सरल है, इतना सुंदर है। क्रिया का भी अनुभव हो जाता है। मार्गदर्शन दिया है कि भक्तिमान के प्रति भक्ति यही सच्ची भक्ति है। एक नया फैक्टर निकाला है, क्या भक्तिमान के प्रति भक्ति। जैसे सत्पुरुष के कोई भक्त होते हैं तो इनके प्रति भक्ति आती है, तो क्या है कि जो भक्त समुदाय है उसके प्रति भक्ति में विनम्रता आ गई तो अहम भाव तो वहां करेगा, वो जिस ग्रुप में है उस ग्रुप में अहम भाव करेगा। उन्होंने एक नई बात मार्गदर्शन में दे दी है कि सत्पुरुष का सच्चा भक्त कौन होता है, कि जो भक्तिमान की भी भक्ति करता है इसलिए वो सत्पुरुष का सच्चा भक्त है। तो उनको कहीं भी भक्ति मार्ग में अहम भाव होने का जो रिस्क है वो रिस्क उसको नहीं आएगा। लेकिन खास करके भक्ति के परिणाम में कहाँ तक भक्ति दासत्व रूप भक्ति होती है। उस प्रकार से वहाँ दर्शन का अनुभाग कटने में कोई वहाँ रिस्क नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है।
दर्शन
अनुभाग घटे से
भक्ति
ओखी ने भक्ति करे तो कभी रीते कि जेनी भक्ति करे से एने मोह ने टाळ्यो छे। भक्ति पण एटला माटे करे छे कि पोताने मोह टाळवो छे, એટલે દર્શન નો અનુભાગ ઘટે છે। એટલે પોતાને મોહ
ટાળવાનો જે પ્રયત્ન કરવો પડે છે એ આમાં નથી કરવો પડતો, સ્વયં ટળી જાય છે।
હા એ સ્વયં ટળી જાય છે, એટલે એને સુગમતાથી લાભ થાય છે, એટલે એનો તાત્વિક રહસ્ય છે। તમારો જે પોઈન્ટ પ્રશ્ન છે એની સામે ઉત્તર છે કે તાત્વિક રહસ્ય શું છે, કે બહુ જ સુગમતાથી બીજો કોઈ પ્રયત્ન કર્યા વિના આ પરિણામથી જ એનો દર્શન મોહનો ભાગ ઘટે છે। એટલે બહુ સહેલો રસ્તો બતાવ્યો છે। એટલે તો એમને કહ્યું કે ઘણા વિચારવાન જીવો ઘણા પ્રકારથી મનન કરતા અમારો દ્રઢ નિશ્ચય છે કે ભક્તિ એ સર્વોપરી માર્ગ છે અને તે સત્પુરુષના ચરણ સમીપ રહીને થાય તો ક્ષણવારમાં મોક્ષ કરી દે તેવો પદાર્થ છે। 201 માં છે આ વખતે, તો 201 માં છે ત્યારે તમે નહીં હો કદાચ, બહુ સારો થયેલો 201 તો એના ઉપરથી તો આખો એક ભક્તિ માર્ગમાં આર્ટિકલ લખ્યો છે આપણે આત્મજાગૃતિમાં, એ તમારી પાસે આવ્યું આત્મજાગૃતિ લઈ લેવા નહીં છે તમારી પાસે એડ્રેસ તો આપી દીધું છે તમે લાડલા અંકને ત્રીજાથી ચાલુ છે પછી જ ભક્તિનો આર્ટિકલ હે પછી પહેલા બીજામાં તો મંગલ પ્રારંભ છે છેલ્લા ત્રણ
છેલ્લા ત્રણ બસ
છે તો છેલ્લા બે માં તો પેલા આવી લીધો. ત્રણ ચાર સ્વાધ્યાય તો એ ભક્તિ માર્ગ ઉપર જ જાય. કેટલા પ્રકારની ભક્તિ કૃપાળુ દેવે લીધી છે, શાસ્ત્રોમાં કેટલા પ્રકારની ભક્તિ ચાલી છે, વ્યવહાર ભક્તિ શું છે, નિશ્ચય ભક્તિ શું છે, યોગ ભક્તિ શું છે, સિદ્ધ ભક્તિ શું છે, દસ બાર પ્રકાર લીધા ને. આત્મજાગૃતિમાં આવી ગયું છે એ પ્રકરણ વિસ્તારથી લીધું છે. પછી પરમાત્માને ધ્યાવવાથી પરમાત્મા થવા, પરમાત્મા થવાય છે એ પોતાના નિજ પરમાત્માને ધ્યાવવાથી પરમાત્મા થવાય છે. એનું ધ્યાન કરવાથી એકાગ્રતા થાય છે. પણ તે સત્પુરુષના ચરણ કમળની વિનય ઉપાસના વિના તે ધ્યાવન થઈ શકતું નથી. આ નિર્ગ્રંથ પ્રવચનનું રહસ્ય છે એમ કરીને એક મથાળું આવ્યું છે. આજ અનુસંધાનમાં એક હેડિંગ લીધું છે એમણે કે નિજ પરમાત્માને ધ્યાવન કરવાથી, ધ્યાવવાથી પરમાત્મા થવાય છે. પરંતુ શરત મૂકી છે કે સીધું કોઈ એવી રીતે પરમાત્માને ધ્યાવવાથી પરમાત્મા ન થઈ શકે. સત્પુરુષના ચરણ કમળની વિનય ઉપાસના થયા વિના તેવું ધ્યાન પ્રાપ્ત થતું નથી. કેમ કે ધ્યાન કરવાનું કોણ સમજાવશે, કેવી રીતે સમજશે? કેમ કે ધ્યાન તો અંતર્મુખી પરિણામ છે અને અંતર્મુખ થવાનું તો અનાદિથી અજાયનો છે. એટલા માટે એમણે એ વાતને આ નિર્ગ્રંથ પ્રવચનનું રહસ્ય છે એમ કરીને હેડિંગ
લખ્યું. 539
હે
539 ભક્તિ નું
539 ને એ તો એ ધારશીભાઈ કરીને જજ હતા, એના માટે કોઈ સમજીને લખેલું છે.
ભક્તિમાન ની દાસન હા
નિજબુદ્ધિ કરે તો પરિભ્રમણ થાય, પરિભ્રમણ દશાને પામે. નિજને વિશે નિજબુદ્ધિ કરે તો પરિભ્રમણ દશા ટળે. જેના ચિત્તમાં એવો માર્ગ વિચારવો અવશ્યનો છે કે આ કરવા જેવું છે, પર પદાર્થમાં નિજબુદ્ધિ ત્યાગવા જેવી છે, નિજમાં નિજબુદ્ધિ કરવા જેવી છે, આ જ સન્માર્ગ છે. આ સન્માર્ગ જેને વિચારવા જેવો અવશ્ય લાગે છે તેને તેવું જ્ઞાન જેના આત્મામાં પ્રકાશ પામ્યું છે એવા જે સત્પુરુષ તેની દાસાનો દાસ પણ અનન્ય ભક્તિ કરવી. અગલી વાત તો સમજમાં આવી, નિજબુદ્ધિ પરબુદ્ધિ કહેવાય. એસા જિસકો જિસકે ચિત્ત મેં એસા સન્માર્ગ કા વિચાર કરના આવશ્યક લગા હો ઉસે એસા જ્ઞાન જિસકે આત્મા મેં પ્રકાશિત હુઆ હૈ, પ્રગટ હુઆ હૈ, એસા જો સત્પુરુષ ઉનકી દાસાનું દાસ પણે સે અનન્ય ભક્તિ કરના, અન્યપણે નહીં રહે કરકે અનન્યપણે ભક્તિ કરના, યહી પરમ શ્રેય હૈ, યહી પરમ કલ્યાણ હૈ ઇસકા. ઓર વો દાસાનું દાસ ભક્તિમાન કી ભક્તિ પ્રાપ્ત હુએ યહાં લિયા હૈ ક્યા. वो दासानुदास ऐसा कोई भक्तिमान है, उसकी भी जो भक्ति करता है ऐसा कोई सत्पुरुष का भक्त है जो दासानुदास रूप से अनन्य भक्ति करता हो, उसकी जो भक्ति प्राप्त करता है, पर उसकी भक्ति करने में जिसको विषमता नहीं लगती है, यानी अपना छोटापन नहीं लगता है कि मैं तो इसके इससे भी नीचे हूँ, इसे ऐसा जिसको नहीं लगता है, ऐसे ज्ञानी को धन्य है.
ज्ञानी बोल दिया
क्या शिक्षक लगाया. ज्ञानी ऐसे होते हैं कि ज्ञानी तो इसकी भी भक्ति करते हैं. जो दासानुदास जो भक्तिमान है उसकी भक्ति तो ज्ञानी करते हैं, और ज्ञानी को उसमें विषमता नहीं आती। जैसे कि कृपालु देव ने भक्ति किया कि नहीं किया सुभाष भाई की, तो उसको अनन्य भक्ति थी, तो उस भक्ति करने में क्या उसको विषमता आई क्या?
नहीं।
कि मैं इसके ऊपर हूँ, ऊपर की योग्यता में हूँ, वो मेरे से नीचे की योग्यता, इसलिए मैं इसकी भक्ति क्यों करूँ, उसकी विषमता नहीं आई। ऐसे ज्ञानी को धन्य है। ऐसी सर्वांश दशा जब तक प्रकट न हुई हो, ऐसी विनम्रता नहीं आई हो वहां तक, आत्मा को कोई गुरुपरा से आराधन करता है, बहुमान देता है आत्मा को, ऐसे जीव को वहां प्रथम ऐसा गुरुपणा का त्याग करके अपने शिष्य के प्रति दासानुदास रूप से वर्तन करना कठिन होता है। तो कृपालु देव कैसे बात है?
एक तो भी जगत आखानु जो शिष्य थवा तैयार होती है।
हाँ, आश्रित किसी लिया है और परमेश्वर पुरुष में परमेश्वर बुद्धि में क्या लिया है? सर्व प्राणी के विषय दासत्व मनाता है, ये तो लक्षण लिया है इसमें। ऐसी बातें शास्त्र में नहीं मिलती, हमारे उपलब्ध शास्त्र में ऐसी बातें नहीं मिलती जो कृपालु देव के वचन में मिलती है आज।
जी,
कितने पत्र?
539 चौथो प्रश्न छे तुम्हारा।
स्वामी हूँ और की स्वामी ने जी मुझे विशेष
शुद्धता के पावन
देवचंद्र
जी ने देवचंद्र जी ने से। अच्छा, આગળ પાછળ નો કઈ રેફરન્સ સ્વામી માં શું કહેવા માંગે છે? પરમાત્મા સ્વામી ના ગુણ ઓળખી સ્વામી ને જે ભજે દર્શન શુદ્ધતા તે પામે, તો શુદ્ધ દર્શન મોહ ની વાત થઈ, મોહ ના અભાવ સ્વભાવે છે પરમાત્મા।
આમાં શું પ્રક્રિયા શું બને છે જ્ઞાન માર્ગ માં કે મોહ એને પુરુષાર્થ કર્યા વગર એને મોહ
નહીં? ઓળખાણ થઈ ને, ઓળખાણ થઈ એટલે બહુમાન આવ્યું, અસંખ્ય યોજન કોઈ ગમે એવો તર્યો હોય ને, માઇલ બે માઇલ તરે એટલે થાકી જાય દરિયામાં, ગમે એવું બાહુબળ હોય ને, માઇલ બે માઇલ ચાર માઇલ તરે એટલે થાકી જાય, ડૂબી જ જાય, તર્યો હોય તો ડૂબી જાય, ત્યારે તો અસંખ્ય યોજન નો છે સમુદ્ર। તો કે એ હાથથી તરવા વાળો કોઈ તરી જાય, રમણ સમુદ્ર તરવો એનાથી પણ દુર્લભ છે, સ્વયંભૂ રમણ સમુદ્ર તરવો સહેલો છે, પણ મો સ્વયંભૂ રમણ સમુદ્ર જે તરવો છે ને, તો એને જે તર્યા એના પુરુષાર્થ નું પરાક્રમ જોઈને એના પ્રત્યે બહુમાન આવે છે। જેને એ બહુમાન આવે એ ભક્તિના પરિણામ છે। એટલે અમે તો ભક્તિ ને જ્ઞાન ની પર્યાય ગણીએ છીએ, રાગ ની પર્યાય નથી ગણતા। લોકો જે રાગ ની પર્યાય ને ભક્તિ ગણે છે એ ભક્તિ ના સ્વરૂપ ને સમજ્યા નથી। જેને આવી જ્ઞાન ની વિવેક ની પર્યાય પ્રગટી છે, એસે જીવ કા રાગ બેચારા ઇસકે પીછે પીછે જ્ઞાન કે પીછે ઘસીટ કે ચલતા હૈ। કેમકે જ્ઞાન તો બહુમાન કરતા હૈ, તો રાગ કો બહુમાન કરના પડતા હૈ। तो लोग राग को जानते हैं, ज्ञान को पहचानते नहीं, वास्तव में वो भक्ति ज्ञान के पर्याय है। तो ऐसे मोह का अभाव करने वाले के प्रति हो भाव होना, ऐसा परिणाम स्वयं के दर्शन मोह का अनुभव को तोड़ता है, ताकत को तोड़ देता है, ये इसका रहस्य है। उसको रहस्य भक्ति कहते हैं कृपालु, इसका नाम भी दिया रहस्य भक्ति। भक्ति में रहस्य क्या है कि यही रहस्य है इसका, कि बहुत आसानी से दर्शन को अनुभव को तोड़ना, कोई रिस्क नहीं लगे इस तरह से तोड़ना, सुगमता से ये काम होता है। पहचान करके बहुमान सहज आ जाए, इसका नाम भक्ति है। हम दो चार पद का गीत गा लें वो कोई भक्ति का स्वरूप नहीं मानते, ऐसा भक्त का स्वरूप नहीं है। वो तो पदरचना में भक्ति इसलिए रूढ़िगत हो गई है कि जिनको ऐसे बहुत बहुमान हुआ उनकी भाषा गद्य से छूटकर पद्य में आ गई
जी।
ये सहज हो गया, रस बढ़ जाने से गद्य छूटकर वो पद्य बन गया है, तो हम लोगों ने रूढ़ी को रूढ़ी में ले लिया है। पर ऐसा रस नहीं होगा तो भी पद बनाने लग गए हम लोग, कवित्व शक्ति का दुरुपयोग हो गया है। वास्तव में दूसरी बात है कि जब बहुत रस आता है तो भाषा भी गद्यात्मक छूटकर पद्यात्मक हो जाती है, किसी को उसी को भक्ति पद कहते हैं।
गुरुदेव ने
हाँ वो मिले हम तो उनको, वो भी कवि है, वो भी कवि है, कवि है, लेकिन कवि होना एक बात है और कवि हृदय होना वो दूसरी बात है। जो कवि हृदय होता है उनकी भाषा ऐसी बन जाती है कि गद्य छूटकर पद्य में आ जाता है, ऐसा बनता है। ये रस की तीव्रता का सूचक परिणाम है। जैसे अमृत चंद्राचार्य टीका लगते लिखते लिखते श्लोक क्यों लिखते हैं? टीका तो गद्यात्मक लिखते हैं, इसमें से पद्यात्मक में आ जाते हैं। हमारे गुरुदेव का ऐसा होता है,
गुरुदेव
कभी वो बहुत रस में आ जाते तो वो जो बोलते थे वो ललकारने लग जाते थे। ये रस की मात्रा बढ़ गई तो ऐसा वो कभी नहीं थे, फिर भी कोई कवि था उसको सवाल नहीं, वो ललकारने लग जाते थे, पद्यात्मक बोलने लग जाते थे, वाक्य रचना पद्यात्मक बोलने लग जाते थे, रस बढ़ जाता था, तो ऐसा हो जाता, उसी का नाम भक्ति, भक्ति पद बोला जाता।
ये कहते हैं ना शुद्धोपयोग में आने के लिए प्रशस्त रस को भी छोड़ना पड़ेगा।
शुद्धोपयोग में आने
के लिए प्रशस्त रस
हाँ छूट जाता है, वो छोड़ना पड़ेगा,
छोड़ना नहीं पड़ता है,
छूट जाता है,
वो विकल्प नहीं करना है।
उसका कारण क्या है कि भेद ज्ञान में तो राग का निषेध चलता है, ज्ञान का आदर होता है और राग का निषेध चलता है, तो राग तो मिट जाएगा। राग तो ज्ञान के पीछे पीछे चलता है तो भी ज्ञान उसको धक्का मार के निकालता है, तो मेरे पीछे मत आओ, तेरा काम नहीं है, तुझे प्रवेश मिलने वाला नहीं है हमारे क्षेत्र में, ये आराधना का क्षेत्र है, तेरा स्वभाव विराधक है, आराधक स्वभाव ही नहीं है राग का, तो राग परत के भीतर आगता हो जाती है चारित्र में, ये आराधना है।
कितना सरल कर
एक बाजु आपने कही प्रफुल्त राग ने छोड़वा जेवो छे, एक बाजु भक्ति ने महिमा सत्रुप नो भक्ति आम जाने मन लाग्या करतु तू क्या विनम ભાષા જુદી જાતની આવે આપણને એમ કે આ ભાષામાં વિનમ્રતા એટલી બધી જુદી લાગે કે જ્યારે ભિન્નતા આવે છે અને અને મારે તો ચંદ્રજી ડૉક્ટર જેને પણ આ વખતે વાત થઈ હતી કે હે પ્રભુ દીન છું આપણે જે બોલીએ છીએ હવે આ શબ્દો તો આપણે ઘણા વર્ષ સુધી બોલીએ છીએ હવે ક્યાં સુધી ભિન્નતા રાખવી છે એમ બનવા આજે તમે એક બહુ સુંદર કર્યો પ્રશ્ન બહુ સુંદર પ્રશ્ન કર્યો કે ભક્તિની લાગણી પાછળ જ્ઞાન છે એટલે જ્ઞાન ભક્તિની પાછળ આવે છે ભક્તિ જ્ઞાનની પાછળ આવે છે એમ વિચાર કરી છીએ તો આમાં આમાં જે આપે શબ્દનો ભક્તિનો અર્થ કાઢ્યો જ્ઞાન એક વિચાર તો મારો આખો ભ્રમ આ સુધી મારા મનમાં આવ્યો ચંદ્રી ડોક્ટરને કીધું તું ચિંતા
આત્મધર્મના સંપાદક છે ને ઉમેદભાઈ ને એક વાર સોનગઢના સ્વાધ્યાયમાં સોનગઢના સ્વાધ્યાય હોલની અંદર જ આ પ્રકરણ ચાલ્યું મારે એ લોકો સાંભળવા બેઠા હતા અરે ભક્તિ જ્ઞાનની પર્યાય છે અને દર્શનનો અનુભવ તોડે છે આ વાત તો અત્યાર સુધી સમજમાં હવે ખબર પડે છે કે શ્રીમદજી કેમ આમ કહે છે અત્યાર સુધી કે શ્રીમદજીનું નામના ભક્તિ વિષયક વચનોનું સમાધાન નહોતું થતું કે મને હવે તમારી વાત સાંભળ્યા પછી મને સમાધાન થાય છે
જ્ઞાનનો વિવેક જ વિવેક છે પછી
રાગ તો એની પાછળ પાછળ ચાલે છે
પણ શબ્દોમાં
ભાવ તો જ્ઞાનનું છે આમાં રાગ તો ઘસડાય છે એની પાછળ. લોકો રાગ ને જોવે છે, જ્ઞાન ને જોતા નથી, એનું શું કરવું? પણ એ પોતે ભૂત શબ્દ શું કરવા વાપરે છે? રહસ્ય ભક્તિ નો અર્થ શું લ્યો? રહસ્ય ભક્તિ નો અર્થ શું? ભક્તિમાં વળી રહસ્ય શું? રહસ્ય આત્મકલ્યાણ થાય કેવી રીતે થાય એ રહસ્ય છે. આત્મકલ્યાણ થાય પણ કેવી રીતે થાય? રાગ કરતા કરતા આત્મકલ્યાણ થાય કા? રાગ કરતા કરતા તો થાય ને, તો પછી રહસ્ય શું છે? આ રહસ્ય છે, તાત્વિક રહસ્ય હોવું જોઈએ. એક સત્પુરુષ છે કૃપાળુ દેવ, જે વાત લઈ લઈએ હવે, એના પ્રત્યેનો ઓળખાણ પૂર્વક નું જે બહુમાન છે, દર્શન મોહને 10,000 સુભટ ને એકલે હાથે હરાવવા સહેલા છે. 10,00,000 સુભટ ને લડવૈયા, સુભટ એટલે લડવૈયા, એક દર્શન મોહને હરાવવા સહેલો નથી. ઈ જેને હરાવ્યો છે સામાન્ય ઘટે, પણ પાછો તીવ્ર થતા વાર ન લાગે. ઓક સમજવા વાળા ને તો થોડોક મન થાય જેવો તેવો, ને પાછો તીવ્ર પણ થઈ જાય. ઓળખાણ પૂર્વક હોય પોતાની સાક્ષી એવી આપી છે કે અમે એ રીતે પામ્યા છે. એવું શું કરવા કીધું કે એ રીતે પામ્યા છે ને, અનંત જ્ઞાનીઓ પણ એ જ રીતે પામ્યા છે. આ તો પોતે કહ્યું કે અમે એ રીતે પામ્યા છીએ, ભૂતકાળમાં અમને જ્ઞાન આ પ્રકારે થયું હતું. પણ જે પામ્યા છે, પામે છે અને પામશે, એમાં બીજો રસ્તો નથી. એટલે પ્રત્યક્ષ યોગનું મહત્વ છે કે સમ્યક દર્શનનું જે બીજ,
બરાબર,
બીજમાંથી મૂળ નીકળે છે. મૂળમાંથી ભલે પછી વૃક્ષ થતું હોય, પણ મૂળ પણ બીજમાંથી નીકળે છે. તો સમ્યક દર્શન તો મોક્ષ માર્ગનું મૂળ છે. શું? દર્શન મૂલો ધમો, ધર્મ નું મૂળ છે. પણ ધર્મ નું બીજ શું? તો કે ધર્મ નું બીજ પ્રત્યક્ષ યોગ છે સત્પુરુષ નો. કેમ કે બીજ ત્યારે જ વવાય છે, પ્રત્યક્ષ યોગ સિવાય આ બીજ વવાતું નથી. અને એ બીજ માંથી અંકુર ફૂટશે, એ સમ્યક દર્શન નું ફૂટશે. અને એ ત્રણેય કાળે સૈદ્ધાંતિક રીતે અફર સિદ્ધાંત છે. ત્રણેય કાળનો આ અફર સિદ્ધાંત છે. એટલે એમને કોઈ 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 એક મુમુક્ષુને તો એવું લખ્યું પણ છે કે અત્યારે બીજ વવાય છે એને ખોટો થવા નહીં. કોને? હા, લલિત સ્વામીને જ લખે છે કે આ અત્યારે જે બીજ વવાય છે એને ખોતરશો નહીં, તમે સરખી રીતે એને પોષણ આપજો. એનો અર્થ કે તમે એને પોષણ આપજો. બીજને વાવ્યા પછી એને પાણી આપીને પોષણ આપવું જોઈએ, તો એમાંથી ઉગે. ખરેખર એમણે મુમુક્ષુ માટે બહુ સીધો રસ્તો બતાવ્યો છે. સામાન્ય રીતે મુમુક્ષુ શું કરે છે કે કોઈ પૂજા ભક્તિ કરે છે, ભક્તિ માર્ગમાં લાગે છે, ભક્તિ ભક્તિ જ કર્યા કરે છે કલાકો સુધી. તો કોઈ ધાર્મિક ક્ષેત્રમાં ક્રિયાકાંડમાં પડી જાય છે, એટલે વ્રત નિયમ ઉપવાસ. કોઈ સ્વાધ્યાય આદિ જ્ઞાન માર્ગમાં ચડી જાય છે, તો બહુ શાસ્ત્ર વાંચી વાંચીને મોટા વિદ્વાન પણ થઈ જાય છે. એમણે એ કાંઈ ન લીધું, એમણે સીધો રસ્તો બતાવ્યો છે કે આપ્ત પુરુષના વચનની પ્રતીતિ આ ઓળખાણ કરતો પહેલા આજ્ઞા રુચિ અને સ્વચ્છંદ નિરોગૃહ ભક્તિ. એટલે ઓળખાણ થાય તો આ પ્રકારના પરિણામ થાય. એટલે પહેલા તો સત્પુરુષને ઓળખ, એના ઉપર જ એમણે એ પત્ર લખ્યો છે. બીજું કઈ શોધમાં, એક સત્પુરુષને શોધ, પછી મોક્ષ ન મળે તો મારી પાસેથી લઈ લેજો. એટલે બહુ જ સીધો રસ્તો બતાવ્યો છે. અને એને એમને પહેલું સંકેત કીધું છે, એ વાતને આને બીજ રૂપ સમ્યક કીધું છે, સંકેત નું બીજ જ આને કીધું છે. અહીંથી બીજું વાવવાની વાત છે. આપ તો પુરુષના વચનની પ્રીતિ રૂપ, એની આજ્ઞા રુચિ રૂપ, બધા ભક્તિ ભક્તિ લેવી, પ્રીતિ રૂપ ભક્તિ, આજ્ઞા રુચિ રૂપ ભક્તિ અને સ્વચ્છંદ રૂપ ભક્તિ, ભક્તિ પ્રણય છે. આ પહેલું પહેલું સંકેત થયું. આ સંકેત થયું ઓળખાણને લઈને થયું. એટલે જે સ્વરૂપનું ભાવભાષણ છે એ બીજું સંકેત, એ સંકેતમાં તો આવવાની યોગ્યતા તને થઈ. એ બીજું થયું એટલે તને નિર્વિકલ્પ સમ્યક દર્શન થવાની યોગ્યતા થઈ. આ ત્રીજું થશે. એકની પાછળ બીજું બંધાયેલું છે, બીજાની પાછળ ત્રીજું બંધાયેલું છે. આખી યોજના એમણે મૂકી દીધી છે, સમ્યક દર્શન પામવાની યોજના એમણે આત્મસિદ્ધિમાં આ રીતે મૂકી છે. એ એમણે સુભાષભાઈને 751 પત્ર લખીને સમજાવ્યું. સવાલ જ નથી કાંઈ. કારણ વગર કાર્યની ઉત્પત્તિ કેવી રીતે થાય? જેને પહેલું ન થાય એને બીજું નથી. ત્રણેય કાળ એવો તો પ્રત્યક્ષ યોગથી બીજ વવાનું તો વાવવાનું તો ત્રણેય કાળ હશે. 194માં 3 કાળ લીધા, થયું છે અને થશે. પેલા પ્રત્યક્ષ યોગ ગોતવો આ સીધી વાત છે.
અને એની ઓળખાણ પહેલી આપી દીધી કે ભાવ અપ્રતિબદ્ધતાથી નિરંતર વિચરે છે એવા જ્ઞાની.
એટલે શું છે કે જ્ઞાની ની ઓળખ આપી. જ્ઞાની ને તો ભાવ પ્રતિબંધ હોય જ ને, તો જ જ્ઞાની થાય. આમ તો પ્રતિબંધ ટાળ્યા પછી તો જ્ઞાની થાય છે. સમાજ પ્રતિબંધ, કુટુંબ પ્રતિબંધ, દેહ પ્રતિબંધ ને વિકલ્પ પ્રતિબંધ, ચારે પ્રતિબંધ ટાળ્યા પછી તો જ્ઞાની થાય છે. નહીં નહીં નહીં, પંડિત નહીં, વિદ્વાન. જ્ઞાની આ સમ્યક દ્રષ્ટિ, આત્મજ્ઞાની, અનુભવ જ્ઞાની. વિદવત્તા કુછ નહીં હોતો ભાઈ ચલે, બિલકુલ વિદવત્તા નહીં હોતો ભી ચલે, બિલકુલ પંડિતાઈ નહીં હો તો ભી વો જ્ઞાની હૈ. જ્ઞાની મેને અનુભવ, આત્માનુભવ કા જ્ઞાની, વો ઉસકો જ્ઞાની.
તો વૈસે ગુરુ મિલના આજકલ તો બહોત કમ
ચાન્સ હોતા. યે બાત જરૂર હૈ કે આજકલ એસા એસા મિલના કઠિન હૈ, ફિર ભી પાને સે હી ત્રિષા છિપેગી, ઓર પાને જિંદા રહેને કે લિયે પાની આવશ્યક હૈ. પાણી પીના હિ પડેગા, અગર હમે જિંદા રહેના હો તો બિના પાણી હમારા જીવન નહીં ચલેગા. એસે હમકો સંસાર તીરના હૈ તો સબ કુછ કી ખોજ કરની પડેગી. હા, આજકલ નહીં મિલતે હૈ, સહી બાત હૈ, નહીં મિલતે હૈ તો આપ ખોજ તો ચાલુ રખો. ખોજ કરતે કરતે ભલે આયુ પૂરા હો જાય આપકા. જો ખોજ કે પરિણામ હૈ, ઇસકે ફલ મેં ક્યા મિલેગા? કુદરત બંધી હુઈ હૈ. આપકા આને વાલા ભાવ સત્પુરુષ કે ચરણ મેં હો જાયેગા, અગર ઇસ ભાવ મેં નહીં મિલેગા તો. અગર કોઈ હોગા તો પહેચાન આ જાયેગી, ક્યોંકિ આપકી ખોજ ચાલુ હૈ. ઇસલિયે દો મેં સે એક તો બનને વાલા હૈ હૈ ઓર હૈ, નિશ્ચિત હૈ. ઇસલિયે આપકો તો ઉચિત હૈ કે ખોજ ચાલુ રખે. નહીં મિલેગા ઇસલિયે જો ખોજ છોડ દેંગે, ઉસકો તો પડોસ મેં હોગા તો ભી મિલેગા નહીં, ક્યોંકિ ઉસકી ખોજ નહીં હૈ. તો પડોશી જ્ઞાની હોંગે ને તો ભી ઉપેક્ષા કરેગા, એ વાત હો જાયેગી. ઉનકો તો ખોજ નહીં હૈ, ખોજ નહીં હૈ ઇસકા મતલબ દરકાર નહીં હૈ ઉસકો, યે વાત હૈ. અચ્છી વાત.
અસમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત કરને કે લિયે શાસ્ત્રો કા અભ્યાસ કિતના કિતને સાલ તક કહેને ઉસકા કુછ એસા હૈ ક્યા કે કિતના હોવે ક્યા એસા કુછ?
એસે બહુત સી જ્ઞાની હુએ જો શાસ્ત્ર કો બિના પઢે જ્ઞાની હો ગયે, એસે બહુત હુએ. ક્યા કરે, તો
પિછલે
જન્મ કા સંસ્કાર. નહીં નહીં, ઇસ ભાવ મેં ભી એસા કોઈ બાત નહીં હૈ, એસા નહીં. તબ તો ક્યા હૈ કે જો શાસ્ત્ર જ્યાદા પઢેગા ઉસકો સમ્યક દર્શન તો હોગા હી હોગા. તો વિદ્વાનો કો ઓર પંડિતો કો તો હોય હોને હોય જાના ચાહીએ, દૂસરે કો નહીં હોના ચાહીએ. જબકે દૂસરે કો હોતા હૈ ઓર વો રહે જાતે હૈ. ઇસકા મતલબ ક્યા હુઆ કે યે કોઈ ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન ઇસમે નહીં હૈ.
प्रारंभिक ज्ञान
की वस्तु का स्वरूप वगैरह द्रव्य को, बस एक बात अवश्य है कि आत्मा को जानना है, आत्मज्ञान करने के लिए आत्मस्वरूप का ज्ञान करना है। आत्मस्वरूप का अनुभव ज्ञान क्या से होगा कि जो आत्मज्ञान होगा वहां से होगा, बस सीधी सादी बात तो वो है। तो शास्त्र नहीं पढ़ो और ज्ञानी पुरुष अगर मिल गया तो काम हो जाएगा, काम तो वो करने लायक है, वो नहीं करते हैं और शास्त्र पढ़ने लग जाते हैं, जो करना है वो करते नहीं और शास्त्र पढ़ने लग जाते हैं और मानते हैं ऐसे कि कुछ इसमें से हो जाएगा, तो ये बात भी होने वाली तो है ही नहीं। ऐसा
शास्त्र है,
शास्त्र क्या है, वो शास्त्र भी है, गुरु भी है,
देव भी
है। और देव भी है, यही मोक्ष है। मूर्तिमान मोक्ष है, सत्पुरुष मूर्तिमान मोक्ष है, मूर्तिमान लिया
है। प्रकट कल्पना
ऐसा नहीं है, शास्त्र ही प्रकट, ऐसा नहीं है, सत्पुरुष है, शास्त्र है, वैसा नहीं कह सकते कि शास्त्र ईश्वर
इज, शास्त्र तो जड़ है, पन्ने है,
वो नहीं हो सकता।
नहीं नहीं, उसको ज्ञान नहीं है, शास्त्र के पन्ने को ज्ञान नहीं, इसको खुद को ही ज्ञान नहीं है, वो क्या ज्ञान देगा।
काले काले अक्षर है, काले काले अक्षर
है और क्या, वो तो समय सामने तो गाथा है, रे शास्त्र त्रे नथी ज्ञान, शास्त्र कहीं जाने नहीं, गाथा से तुमको नाचा नहीं। किसी ने किस पर जोर दिया, किसी ने किसी पर जोर दिया, किसी ने किसी पर जोर दिया, जिसकी जैसी रुचि। इसलिए तो हमें मार्ग ढूंढना पड़ता है कि कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, हमें क्या करना है, इसकी खोज हमें करनी पड़ेगी, इसका निर्णय भी हमें करना पड़ेगा। ऐसी बात क्यों, बाजार में दुकान लगी है, सब कहते हैं कि हमारे यहाँ आओ, अच्छे से अच्छे माल देंगे, अब हमारे किसके यहाँ जाना है, तो निर्णय तो अपने करना ही पड़ेगा। उसमें गलती करेंगे तो हमारा नुकसान होगा, गलती नहीं करेंगे तो हमारा लाभ हो जाएगा, सीधी सादी बात है।
बहुत सारे निर्णय करने के लिए
हैं, लेने में अगर बहुत सतर्कता रखनी पड़ेगी, ये बात तो है।
अगर दो तीन दुकानदारों को चुन के चलाया तो क्या बुराई है, दो तीन दुकानदारों को सुन के चला जाए तो क्या हो रही है,
सुन के
दो तीन दुकानदारों को कलेक्शन कर लें कि बस इन्हीं तीनों पे रहना है तो भी कोई बुराई है क्या, एक ही दुकानदार का बनकर रहना पड़े,
दो तीन सही है, दोनों तीनों सही है क्या,
नहीं नहीं हो तो कोई तो सही होगा,
हमारा अगर तीनों सही है तो कोई आपत्ति नहीं, तीनों सही नहीं है, एक सही है तो दो का पता चल जाएगा, ये दो सही नहीं है, एक सही है, बात तो सही है तो कोई नुकसान नहीं,
अगर पता चलने पर भी नहीं छोड़ा तो नुकसान है।
पता चलने से नहीं छोड़ना
चाहिए, प्रमाणिक दुकानदार नो आग्रह न हो कि पोतन के अधिक मान ले।
प्रमाणिक दुकानदार प्रमाणिक है, उसका लक्षण क्या, तो कभी आग्रह नहीं करेगा कि मेरा माल शुद्ध है, प्योर प्योर माल मेरे यहाँ मिलता है, वो आग्रह नहीं करेगा, अपना मान का मखान नहीं करेगा, वो बोलेगा भाई ये सैंपल है तो निर्णय करो, मेरा ये माल है, मैं तो अच्छा ही कहूँगा, इससे क्या मतलब। हम सोनगढ़ इसी बात पर आए, इसी बात तो हमारा सोनगढ़ आना हुआ, हमको जिसने आत्मधर्म दिया, एक मुमुक्ष थे वो अभी नहीं है गुजरे, तो मैंने आत्मधर्म पढ़ा, आत्मज्ञान की बातें थी इसमें, तो कृपाल जी का ग्रंथ पढ़ने से मैं ये समझ गया कि बात तो आत्मज्ञान की करते हैं, फालतू की बात तो इसमें नहीं है। मैंने उसको पूछा, इसमें बातें तो अच्छी अच्छी है, आपको क्या लगती है, तो देखो मैं तो मानता हूँ इसलिए मैं क्या कहूँगा, आप बुद्धिमान है, परीक्षा करके निर्णय करो, मुझे क्यों पूछते हो, मैं तो उनको मानता हूँ तो मैं बुरा थोड़ा बोलूँगा, मैं सोनगढ़ जाता हूँ, कहाँ जी स्वामी को मानता हूँ, मैं उसकी बुराई थोड़ी कम बोलने वाला हूँ, मैं तो कहूँगा कि अच्छा इससे क्या फायदा, ये तो एक पक्ष की बात हो गई, निष्पक्ष होकर के आप तलाश करो, परीक्षा करो, जांच करो, अगर आपको लगे तो मानना नहीं लगे तो नहीं मानना, मुझे अच्छा लगा कि आदमी प्रमाणिकता से बात करता है कम से कम तो मेरे जाने का अट्रैक्शन हो गया इस बात पर। तो
ये भाई साहब कौन थे?
शांति भाई सर्वैया करीने गुजरी गया, मेरा मित्र सा था, कुछ मैं स्वाध्याय साथे करता था। आप तो शू है एक प्रोविजन स्टोर होता, मैं हूँ सवारे मैं कृपाणु देवना वाचन करता था पत्रों, सवारे पाँच थी सात साढ़ा सात बे अढ़ी कलाक दिवस भर में कोई फुर्सत मिले नहीं, बस परोड़िए वहला स्वाध्याय बे अढ़ी कलाक साथ बैसी ने करिए। પછી હું સ્વાધ્યાય કરીને ઘરે આવું તો રસ્તામાં એક દુકાન પ્રોવિઝન સ્ટોર હતો, કૃપાળુદેવ પ્રત્યે તો રાગ થયેલો, એટલે મને કોઈ કહ્યું કે ભાઈ આ માણસના પ્રોવિઝન સ્ટોરમાં કૃપાળુદેવનો ફોટો છે, એટલે એ એને માનતા હોવા જોઈએ। એટલે મેં એકવાર જોયું કે છે, એટલે મેં પૂછ્યું તમે માનો છો? તો કે હા, માન્ય પુરુષ તરીકે હું માનું છું। પછી થોડી વાતચીતનો વ્યવહાર થયો, એમાંથી સ્નેહ બંધાણો, પછી તો ખૂબ અમે ચર્ચા કરતા હતા, પણ એ માણસ નિષ્પક્ષ માણસ, એટલે કાંઈ ગુરુદેવનું ખેંચીને બોલે નહીં કાંઈ, અને આપણી ચર્ચામાં એને બહુ મજા આવે, આનંદ આવે, એટલે એને તત્વ ચર્ચાથી મતલબ। પછી ફોટા બે હતા, ગુરુદેવનો પણ હતો અને શ્રીમદજીનો પણ હતો, એટલે મેં એકવાર પૂછ્યું કે તમે કાંજી સ્વામીને પણ માનો છો? માનું છું। કેમ લાગ્યું તમને? હું તો સારું જ કહું ને, કઈ અર્થ નથી, તમે વિશેષ બુદ્ધિમાન છો, તમે તપાસ કરીને મળીને નક્કી કરો, આત્મ જ્ઞાની પુરુષને તો ઓળખવાનો વિષય છે, એટલે મારા એકોર્ડિંગ ટુ મી પણ એને એ જ રીતે વાત કરી કે આ તો ઓળખવાનો વિષય છે, તમે કહો છો તમે તો ઓળખીને નક્કી કરો। પછી એમને મને બે ચાર આત્મધર્મમાં આવ્યા, એમને વાતો તો બહુ સરસ આવે છે, તમારી ચર્ચામાં તો આવી કોઈ બહુ વાત નીકળતી ને, તો કે મારો સ્થૂળ ઉપયોગ છે પાસે, એમાં જેટલું આવે છે એટલું સૂક્ષ્મ હું નથી સમજતો, પ્રમાણિક માણસ હતા, હજી છે છોકરાઓ છે, ચેતન વસ્તુ ભંડાર ચેતન સ્ટોર કરીને હજી છે, પ્રોવિઝન સ્ટોર છે, છોકરાઓ ચલાવે છે, બહુ પ્રમાણિકતા છે બોલવાવાળો માણસ, એક એક શબ્દ શું એટલે પોતાના વિશે એને કહી દીધું કે મારો એટલો કોઈ સૂક્ષ્મ ઉપયોગ નથી, હું ભગાવું છું વાંચું છું પણ હું બધું સમજતો નથી, મારો એટલો ઉપયોગ પણ સૂક્ષ્મ નથી, ગુરુદેવની વાતો તો બહુ સૂક્ષ્મ આવે છે, એટલે એ તો સમજવા માટે એટલી તૈયારી જોઈએ, યોગ્યતા જોઈએ, મારી એટલી યોગ્યતા નથી, એ બધી ચોખ્ખી જ વાત કરે, હું સમજું છું એવું નથી, ચર્ચામાં એને બહુ આનંદ આવતો। પછી બધું 2013 સાલ હતી, ગુરુદેવ હતા સમીર શિખરની યાત્રામાં, તમે જાઓ ત્યારે કહેજો હું સાથે આવીશ, પછી એની સાથે પહેલા સવારે વ્યાખ્યાનમાં બેઠા, પછી વ્યાખ્યાન પછી 15-20 જણા પાક બેસી રહ્યા હતા, ધ્યાન ગયું મારા ઉપર, ભાઈ કોણ છે? એમણે ઓળખાણ આપી મારા વખતે, મારી સાથે ભાવનગરથી આવ્યા છે, વિષ્ણુ છે પણ જૈન દર્શનમાં બહુ સારો રસ છે એમનો, આજે મારી સાથે આવ્યા છે, અહીંયા કોઈ જૈન પણ નથી અને અહીંયા કોઈ વૈષ્ણવ પણ નથી, ગુરુદેવ શું બોલ્યા, પહેલો વહેલો મારા અનુસંધાનમાં એવી વાત કાઢી એમણે, અહીંયા કોઈ જૈને નથી અને અહીંયા કોઈ વૈષ્ણવે નથી, અહીંયા તો અમારે બધા આત્મા છે, પહેલા પહેલી વાત એમના મોઢેથી આ મારા અનુસંધાનમાં નીકળી, જોયું કે મધ્યસ્થ અહીંયા બહુ છે, ઓલા ભાઈ તો ઘણા મધ્યસ્થ હતા, બીજા ગુરુદેવ મધ્યસ્થ નીકળ્યા, એટલે પછી તો મધ્યસ્થા ઉપર તો પ્રેમ આવે એ સ્વાભાવિક છે। દોઢેક વર્ષ આખો ગ્રંથ
વાંચીને
સાથે 11 ને લગભગ આખરમાં એ ગ્રંથ મારા હાથમાં આવ્યો છે, અંદાજે એક્ઝેક્ટ ટાઈમ તો મને યાદ નથી રહ્યો, પાછળથી યાદ કરું છું ત્યારે ખ્યાલ આવે છે, 11 ની આખરમાં એ ગ્રંથ મારા હાથમાં આવ્યો છે, અને 13 જેઠ મહિને હું ગયો છું, 1.5-2 વર્ષે સમ્રાટ
તે કરતા અગાઉ કેવી પાત્રતા, તે કરતા અગાઉ રુચિ કેવી,
એ તો પછી આ તો એક સાયન્સ જોયું ને, અને સુખ દુઃખ નો પ્રશ્ન સોલ્વ થતો હતો, પછી તો ઇન્ટરેસ્ટ ડેવલપ થાય તો સ્વાભાવિક છે. એ રીતે ઊંડા ઉતરવાનું તો એ રીતે થયું છે. પરમાત્મા ભક્તિમાં એકરૂપતા એમ છે, પરમાત્માની ભક્તિમાં એકરૂપતા, એ વખતે આત્મલક્ષ પણ સાથે રહે, એ બે કામ એક સાથે કેવી રીતે થાય છે? પ્રેક્ટિકલ સાઈડથી જો સમજવું હોય તો કોઈ પણ માણસ સમજી શકે કે તમે અમેરિકા જોયું નથી, પણ અમેરિકાના વૈભવની વાતો અહીંયા થાય ત્યારે બે કામ થાય છે. તમારે તમારી વૈભવની રુચિ પણ પોસાય છે અને અમેરિકાનું વર્ણન પણ તમે સાંભળો છો. કોઈ માનો કે તમે કોઈ બહુ સારો બેંક બંગલો મકાન મહેલ જોવા ગયા, રાજા મહારાજાનો, એનો વખાણ કરો છો, કેવું સરસ છે. હવે એનું તો તમે જોવો છો ક્યાં ને, રુચિ અહીંયા શું પોસાય છે કે આવું મને હોય તો સારું, એનો અર્થ શું થાય છે? પ્રેક્ટિકલી બે કામ સાથે થાય જ છે, ઉલટી ઉલટી સ્થિતિમાં એટલે સુલટીમાં કેમ ન થાય? ક્યાં ક્યાંક ગુણ વૈભવ જોઈએ છે આપણે, પરમાત્મામાં શું જોઈએ છે? ગુણ વૈભવ જોઈએ છે આપણે, એવા ગુણ મને ગુણની રુચિ પુષ્ટ થાય છે. ખરેખર તો જીન દર્શન છે ને, અનુભવ પ્રકાશમાં એક સદ્દેવ તત્વનું બહુ સરસ વર્ણન કર્યું છે. એટલે જીનેન્દ્ર પરમાત્મા જે છે, જે આપણે ભગવાનની મૂર્તિ સ્થાપીએ છીએ જીન મંદિરમાં, ખરેખર તો આત્મા જે અમૂર્તિક છે એનું મૂર્તિમંત સ્વરૂપ છે, એવો જ આત્મા છે. એવી જે પરમ શાંતિ છે એવો જ આના સ્વભાવ છે. શાંત સ્વરૂપ તો છે જ, એમાં તો કઈ સવાલ જ નથી. એવી જે પરમ શાંતિ જે જણાય છે એવો જ આ આત્મા છે. શાંતિકા કોણ સાકાર છે? ये तो पत्थर का आकार है, शांति का कौन? और हमारा भी देह जितना तो आकार हमारा भी है, लेकिन हमको तो आकार से मतलब नहीं है, हमको तो उनकी शांति से मतलब है. उनके जो शांत भाव है, जो इतने शांत है कि देखने से ही शांति मिले.
वही लगता है हम कभी जब भी मंदिर में आते तो शांति से कोई आता है घंटी बजा देता है.
उसमें चार फैक्टर है भगवान की मूर्ति में, चार बातें इतनी है, इतनी सुंदर है कि अगर हमको भाव भाषण हो उस चार बातों का, तो उसी वक्त हमारे में भी ऐसे ऐसे ही भाव आविर्भाव होने लग जाए, आविर्भाव होने लग जाए. एक तो अनंत स्वसंवेदन की मूर्ति है. क्या अनंत स्व संवेदन की ये मूर्ति है, अनंत स्व संवेदन है. तो जैसे किसी का दुख वेदन देख अगर हम देखते हैं तो हमको दुख हो जाता है कि नहीं हो जाता है?
जी
हाँ. वेदन ऐसी चीज है तो दूसरे को वेदन में ले आता है, ये उल्टा वेदन भी वेदन में ले आता है
जी.
तो ये अनंत स्व संवेदन સંવેદન કો ક્યો નહીં લાયગા? તમે એક અહીંયા એક કૂતરું કે બકરું, કુત્તા પિલ્લુ, કુત્તા કા બચ્ચા, વો ભી ચિલ્લાતા હો, ઇતના પીડા લગતા હો તો દેખને વાલે કો પીડા હોગી કે નહીં હોગી? અરે બેચારે કુછ હોતા હૈ, કુછ હોતા હૈ, ઉસકો દુખ હોતા હૈ
જી.
તો દુખ વેદન દેખને વાલે કો દુખ વેદન કા નિમિત્ત હો જાતા હૈ,
બરાબર.
वो तो सामान्य दुख वेदन है, ये अनंत स्व संवेदन है. अगर ऐसा देखने के तो यहाँ स्व संवेदन आविर्भाव होने लगेगा, ज्ञान वेदन आविर्भाव होने लगेगा. ऐसा ये शांति का भी ऐसा ही है, ये शांति का भी वेदन है और अनंत प्रत्यक्षता प्रकट है.
वेदन तो वाइब्रेशन
नहीं, वेदन मैंने वेदन वेदन मैंने अनुभव
वाइब्रेशन
नो वाइब्रेशन वाइब्रेशन का इधर वो स्थिर है, अकंप दशा है, नो वाइब्रेशन एट ऑल, ऐसा नहीं.
अच्छा,
अनंत प्रत्यक्षता है, हमारे वेदन में भी प्रत्यक्षता है, तो अनुसंधान होता है. और तीसरा वो निरोशेष अंतर्मुख है, परिपूर्ण अंतर्मुख है, जैसा हमारा स्वभाव परिपूर्ण अंतर्मुखी तत्व है वैसा ही है। तो ऐसा भेद नहीं लेकर के ऐसे सभी भेदों की अभेद मूर्ति एक साथ नजर आती है, तो सभी प्रकार के भाव आविर्भूत होने लगते हैं। इसी का नाम जिन दर्शन है। जिन दर्शन ऐसे किया जाता है, ज्ञानी ऐसे ही भगवान का दर्शन प्रत्यक्ष, अनंत प्रत्यक्षता, अनंत स्वसंवेदन, अनंत शांति और परिपूर्ण अंतर्मुखता, ये दिगंबर संप्रदाय वाले भी कैसे दर्शन करना वो पता नहीं है उन लोगों का। हमारे चिरंजीव भाई संपादन करते हैं ना, और स्वाध्याय में ये बात चल गई तो बोले कि हम तो दिगंबर में जन्म किया लेकिन भगवान का दर्शन कैसे करना आज पता चला, अब तक पता ही नहीं था, हो गए ऐसे ही करते थे। बहुत इसलिए तो ये प्रतिष्ठा ज्ञानियों कराते हैं, अरियंत प्रतिमा की प्रतिष्ठा ज्ञानी ने कराई है। क्यों? कि मोक्ष मार्ग में वो स्थापना निक्षेप है, वो नए ज्ञान का विषय है, ये प्रतिष्ठाचार्यों का विषय नहीं है, ये ज्ञानियों का विषय है। इसलिए अनंत प्रतिमा की स्थापना का निषेध किसी भी बहाने किया नहीं जा सकता, कर नहीं सकते, बहुत बड़ा अपराध हो जाता है। इसलिए स्थानकवासी संप्रदाय पर कृपालु देव ने प्रहार किया है, ऐसे कृपालु देव प्रहार नहीं करते थे, बहुत मृदुभाषी मधुरभाषी थे, फिर भी प्रतिमा का निषेध किया है स्थानकवासियों ने, तो उन्होंने तो फटकारा है, कठोर भाषा में निषेध किया है, क्योंकि तो ऐसी चीज बर्दाश्त नहीं करते क्या। हाँ नहीं किया, समी दर्शन में भी जिंदगी में नहीं किया, जिसको संस्कार है सब तो सजीवन मूर्ति
में योग
संस्कार ले लिया। पहले तो सजीवन मूर्ति चाहिए, बीज तो यहाँ से बोएगा, इसके बिना बीज नहीं बोएगा, कोई हो ही नहीं सकता। बाद में आगे की बात, वो जिन प्रतिमा सम्यक दर्शन का निमित्त है ऐसा शास्त्र में आता है, लेकिन किसको? कि जिसको कोई स्वभाव के संस्कार पड़ गए हो उसको, जैसे शास्त्र भी निमित्त है, सूत्र भी निमित्त है, किसको? कि जिसको स्वभाव का संस्कार हुआ हो उसको। और ये स्वभाव का संस्कार जो बीज है वो तो प्रत्यक्ष योग बिना तीन काल में किसी को होता ही नहीं, पड़ता ही नहीं, तो उसमें तो कोई दूसरा कोई अल्टरनेटिव नहीं है।
योग यानी
हाँ जीवन, सजीवन मूर्ति, सजीवन मूर्ति चाहिए, ज्ञानी हो मुनि हो या तीर्थंकर हो, तीनों सजीवन चाहिए, मूर्ति के रूप में नहीं, शास्त्र के रूप में,
है किसी जीवन
में, हाँ प्रत्यक्ष किसी भी भाव में, हाँ आमने सामने प्रत्यक्ष होना चाहिए, परोक्ष में प्रत्यक्ष होना चाहिए, ये सिद्धांत वस्तु स्थिति भी यही है, पावे नहीं गुरु गम बिना यही अनादि
स्थिति,
ये वस्तु स्थिति। वो तो पोषण होता है, भाव का आविर्भाव हो जाता है देख के, आत्मभाव ही प्रभाव तो प्रदर्शित है। ऐसे तो आत्मा ए मूर्ति पदार्थ है, लेकिन जिन प्रतिमा में आत्मा को भी मूर्तिमंत कर दिया है ज्ञानियों ने,
जी
जबरदस्त बात कर दी है, इसलिए इसका बहुत महत्व है। आपको कई नई नई बात मिल जाएगी।
घंटी मिलाई क्या उस क्या हुआ
सर बात
कहते हैं घंटी बजाई तो क्या हुआ
वो डिस्टर्ब हो गया
तो
वही कह रहा हूँ, उसे डिस्टर्ब हो गया घंटी बजाने से वो डिस्टर्ब हो गया है, क्यों? कि घंटी आत्मा में आ गई या आत्मा घंटी में चला गया?
आत्मा घंटी में गया।
आत्मा घंटी में चला गया। अगर हमको तो पता ही नहीं लगता है कि घंटी बजी कि नहीं बजी, उतना ध्यान वहां जा ही नहीं सकता है।
पहले मेरे क्वेश्चन है, व्यवहार निश्चय हमारे इसमें बहुत, अभी हमने अभी शुरू किया है, ये क्यों हमारे धर्म में?
मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ा क्या?
थोड़ा थोड़ा शुरू किया,
वो प्रकरण बहुत लिया है कोडर मस्जिद ने। लेकिन निश्चय व्यवहार क्या है? कि निश्चय जो है वो तो वस्तु का स्वरूप है, और व्यवहार तो जो दूसरे पदार्थ से कोई संयोग संबंध दिखाने के लिए एक परिस्थिति खड़ी होती है। जैसे हम एक मनुष्य हैं, तो मनुष्य है वो हमारा स्वरूप है, तो किसी मनुष्य पर इसका नाम लिखा है क्या? लिखा है, लेकिन उसको उसके साथ व्यवहार कैसे किया जाए? फिर तो इसका वो नाम, इसका वो नाम, इस नाम से इस मनु के साथ व्यवहार होगा, इस नाम से इस मनुष्य के साथ व्यवहार होता है। एक दफे ट्रैवलिंग में थे, ट्रेन में जयपुर या जा रहे थे जयपुर की तरफ अहमदाबाद से, तो हमारे फर्स्ट क्लास के केबिन में एक कोई सन्यासी आ गया। तो मेरा तो ट्रेन में भी रात्रि को तो जैसे घर में लेट उठते हैं, 4 बजे में उठ गया, मैंने देखा तो वो भी उठ गया था, वो भी अपने ध्यान में बैठ गया था, मैं भी अपने चिंतन में बैठ गया। उसको भी ख्याल गया, हम तो कोई एक दूसरे को पहचानते नहीं थे। जब सुबह हुई तो फिर तो ये तो एकांत का विषय रहता है, फिर तो कोई आना जाना ये सब चालू हो जाता है। तो फिर हमने पूछा आपका नाम, थोड़ी बातचीत भी चली हमारे से, फिर आपका नाम? मेरा कोई नाम ही नहीं है। क्या बोला? मेरा कोई नाम नहीं है। तो मैं तो समझ गया वो क्या कहना चाहता है, आत्मा को तो नाम होता नहीं। मैंने कहा किस नाम से आपसे व्यवहार होता है? फिर चौंक गया वो, आपसे कोई व्यवहार होता है तो किस नाम से होता है? तो फिर वो चौंक गया। उसको तो क्या रखा, मैं एक ऐसा उत्तर दूंगा कि वो निरुत्तर हो जाएगा आदमी। जब उन्होंने पूछा तो फिर वो चौंका। फिर उसने नाम बता के इस नाम से व्यवहार चलता है। ठीक है, तो मेरा प्रश्न तो खोल करके मैंने आपको बताया, बिना खोल के वही मतलब था, दूसरा मेरा मतलब नहीं था। ऐसे निश्चय है वस्तु का स्वरूप है, पर कुछ न कुछ तरीके से जो व्यवहार किया जाता है दूसरों से, तो उसी में ही व्यवहार पैदा होता है। जहाँ निश्चय है वहीं व्यवहार पैदा होता है, जहाँ निश्चय है वहीं व्यवहार है, व्यवहार है वहीं निश्चय है। लेकिन दोनों का जो स्वरूप है वो समझना के लिए कोई प्रयोजन होता है, प्रयोजन वश एक ही वस्तु को निश्चय कहते हैं, प्रयोजन वश इसी को इसमें ही व्यवहार से देखा जाता है। जैसे आत्मा है, निश्चय स्वरूप आत्मा का क्या, कि निश्चय आत्म स्वरूप जैसा है वैसा है, जैसा है वैसा है, इसमें क्या समझे? कुछ नहीं समझेंगे। तो उसमें ज्ञान दर्शन चारित्र आनंद प्रभुत्व विभुत्व अस्तित्व आदि अनेक प्रकार के अनंत गुण हैं, इसका अनंत विशिष्टताओं का एक विशेष है वही आत्मा है। तो ये सभी विशिष्टताएं व्यवहार में गई, जबकि इसका निश्चय स्वरूप भी है, आत्मा ज्ञान स्वरूप भी है, आनंद स्वरूप भी है। तो ऐसे निश्चय जहाँ है वहाँ व्यवहार भी है, प्रयोजन वश निश्चय को और प्रयोजन वश व्यवहार को समझना चाहिए, ऐसी बात है। ये बहुत लंबा चौड़ा प्रकरण है, इसमें निश्चय के कितने भी प्रकार हैं, व्यवहार के भी कितने भी प्रकार हैं, ये सब बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं और इसकी बहुत व्यवस्था है सब शास्त्रों में, व्यवस्थित रूप से इसका प्रतिपादन भी है। लेकिन जिसको आत्मज्ञान करना है उसमें उस भेद प्रभेद का कोई खास प्रयोजन नहीं है, वो सीखे नहीं सीखे, समझे नहीं समझे, कोई लेना देना
जैन दर्शन में है, दूसरे दर्शनों में नहीं
है। हाँ नहीं है, इतनी व्यवस्था ही नहीं है।
तत्व
का
नहीं चक्र
जैन दर्शन में जो तत्व का प्रतिपादन है बहुत साइंटिफिक है और बहुत सुव्यवस्थित है। पद्धति उनके जो है वो किसी अन्य दर्शन में प्रतिपादन की जो पद्धति है ऐसी पद्धति कहीं नहीं देखी जाती है। हमने तो ये वेदांत वगैरह में देखा है, सब सबसे ज़्यादा फिलोसफी वेदांत में है और सब तो इसके नीचे वाले हैं। लेकिन प्रतिपादन पद्धति जैन दर्शन की कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते, इट कैन नॉट बी कंपेयर विथ, उतने बहुत व्यवस्थित है, बहुत व्यवस्थित है। हम तो पहले अध्यात्म में नहीं गए तो इसकी पद्धति देखकर हम तो आफरीन हो गए थे।
हाँ। जी।
कि क्या पद्धति है इन लोगों के कहने के, बिल्कुल सिस्टमैटिक साइंटिफिक। फिर इससे लाभ होता है, वो अध्यात्म का लाभ होता है, शांति का लाभ होता है, वो अलग बात है। इतना सुंदर तो व्यवस्थित बात तो कहीं नहीं है, विश्व में कहीं नहीं मिलती है।
साइंटिफिक होने के बाद भी काफी लोग इसका अनुसरण नहीं करते,
समझ में नहीं आए क्या करें। बात तो समझदारी की होती है, और बुद्धिमान होते हुए क्यों नहीं समझते, ये प्रश्न हो सकता है आपका। बड़े बड़े बुद्धिमान भी नहीं अनुकरण करते हैं, क्या नहीं समझते होंगे,
वो पढ़ते बोलते हमको तो समझते ही नहीं कुछ।
हाँ, समझ में नहीं आता है उसको, बुद्धि होते हुए समझ में नहीं आता है, इसका मतलब क्या। बुद्धि है तो नहीं कह सकते, इनका परिचय करने से ये तो पता चलेगा कि है तो बुद्धिमान। हाँ, उसको तो मना नहीं हम कर सकते, उनको आर्ग्यूमेंट देंगे, वो करेंगे वो करेंगे तो पता चल जाएगा कि बुद्धिमान है। फिर नहीं समझने का कारण इसका प्री कॉन्सेप्ट है, मिसकॉन्सेप्ट है। जो पूर्वग्रह है वो मिसकॉन्सेप्ट रूप से में होते हैं, तो जहाँ तक ये मिसकॉन्सेप्ट नहीं जाएगा वहाँ तक उसको ये बात समझ में नहीं आ सकती, कितने भी अच्छी हो व्यवस्थित हो वो नहीं समझ पाएगा। इसके लिए उनको मध्यस्थ होना पड़ेगा, जब ही समझ में आएगा, ये इनकी प्री कंडीशन है।
तो मिसकॉन्सेप्ट
होने का कारण क्या है, ये व्यवस्थित रूप से एक तो पूर्व संस्कार भी है और व्यवस्थित रूप से लोग करीब करीब लोग आगे नहीं बढ़ते हैं, जैसे तैसे मनमानी करते हैं, कर लेते हैं, मनमानी पढ़ लेते हैं, मनमानी समझ लेते हैं, मनमानी निर्धार कर लेते हैं, इसको स्वच्छंद कहते हैं। ये बहुत है, जीव को अनादि से स्वच्छंद बनाते हैं, सन्मार्ग पर आना मुश्किल हो जाता है। पहले तो क्लीन स्लेट होना पड़ता है, मैं कुछ नहीं जानता, जब काम होना उन्हें बहुत सरलता हो जाती है।
मैं कुछ नहीं जानता उसमें क्या
मेरा प्रयोजन आज तक तो मैं समझा है, जब आज तक मैं मेरा सुख का रास्ता नहीं समझा तो दूसरा समझा वो क्या उसकी क्या वैल्यू, तो उसकी कीमत निकल जानी चाहिए। तो बुद्धिमानों को क्या होता है कि अपने समझ का ईगो भी रहता है, मैं भी कुछ हूँ समझता, ये मुश्किल है, ये विटम्बना है उनके।
सदगुरु देवा।